ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक क्रमांक 48। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता छिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि हि। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मार जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। तात्पर्य, ऋषि समीक यह भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्ति की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में साप दे दें तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों तथा हानियों के प्रति लापरवाह होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उसकी परवाह नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीजें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती हैं तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं। क्योंकि यह निजी मामला था, अतएव समीक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण ना भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्ति की जितनी भी शक्ति होती है वह भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती है। ओम अज्ञानति विरंधस्य ज्ञानंजन सलाकया चक्षुर उन्मीलितमेनम तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सह रघुनाथान्वितम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादे गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता छिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि हि। तो ये समीक मुनि है जो श्रृंगी जो बालक है उसने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया है ना। तो परीक्षित महाराज जो हैं जंगल में एक बार जाते हैं आखेट के लिए और वहाँ उनको प्यास लगती है और समीक मुनि के कुटिया में पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो समीक मुनि है ध्यान में बैठे हुए हैं, है ना। तो जो परीक्षित महाराज पहले याचना करते हैं पानी के लिए, क्योंकि वो ध्यान में बैठे हुए थे समीक मुनि, तो वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो परीक्षित महाराज क्या करते हैं कि एक मरा हुआ सांप होता है उसको बाण से उठाते हैं और समीक मुनि के गले में डाल देते हैं, मरा हुआ सांप। तो क्या होता है कि जो समीक मुनि का पुत्र था श्रृंगी ऋषि, वो उस समय अपने मित्रों के साथ स्नान कर रहा होता है नदी में, तो पता चलता है कि पिताजी का अपमान हुआ है ना। तो जो श्रृंगी है वो परीक्षित महाराज को पहले अपशब्द बोलता है वहीं पर जहाँ स्नान कर रहा होता है, और फिर श्राप देता है कि 7 दिन के अंदर ये जो परीक्षित है इसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कलयुग है, क्योंकि परीक्षित महाराज ने सोने का मुकुट पहना था, इसीलिए जो कलयुग है परीक्षित महाराज के सोने के मुकुट में चला गया, और उसकी वजह से वो प्यास की वजह से वो बहुत ज़्यादा आतुर हो गए और उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया। लेकिन आचार्य बताते हैं कि प्यास की वजह से वो इस तरह से व्यवल नहीं हुए, क्योंकि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो उस समय परीक्षित महाराज अपनी माँ के गर्भ में थे, है ना, और ब्रह्मास्त्र इतना तेज था, है ना, उसकी जो शक्ति उसकी जो गर्मी थी सूर्य के समान थी, और उस समय भी भगवान ने जो परीक्षित महाराज है उनकी सुरक्षा किया, इसीलिए उनका नाम एक क्या हुआ, विष्णुराथ, है ना, कि माता के गर्भ में उत्तरा, है ना, उत्तरा के गर्भ में भगवान स्वयं प्रकट हुए, भगवान तो थे ही वहाँ पर लेकिन वहाँ प्रकट हुए, और जो शिशु थे परीक्षित उनका रक्षा किया, है ना। परीक्षित मतलब वन हु एग्जामिन्स, जो उन्होंने बचपन में जो भगवान विष्णु हैं उनके दर्शन किए, और जब वो गर्भ से बाहर निकले तो हमेशा उस व्यक्ति को ढूंढते रहते थे जो उन्होंने गर्भ में जिसको देखा था, तो इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, परीक्षित, मतलब जो हर व्यक्ति की परीक्षा करता है, वो हमेशा वो ढूंढ रहे हैं कि जो मैंने अपने माता के घर में जिनका दर्शन किया है वो कौन है, वो कहाँ मिलेंगे मुझे, तो हर व्यक्ति को क्या है, विश्लेषण कर रहा है, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि प्यास की वजह से, है ना, थोड़ा सा मन विचलित हुआ और मरा हुआ सांप समीक मुनि के गले में डाल दिया। वास्तव में जो कलयुग है वो कहाँ गया, जो श्रृंगी ऋषि है ब्राह्मण उनकी बुद्धि में चला गया, है ना। और जैसे वो श्रृंगी ऋषि की बुद्धि में गया कलयुग, तो जो ब्राह्मण ने देखा नहीं कि जो राजा है इतना शुद्ध भक्त है, है ना, और इतनी अच्छी तरह से राज्य कर रहा है, और उन्हें श्राप दे दिया, है ना। तो अभी ये जो श्लोक है, श्राप देने के बाद समीक मुनि बोल रहे हैं, समीक मुनि प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, क्योंकि जब बचपन में गर्भ में भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा किया तो एक साधारण बालक के श्राप से भी रक्षा कर सकते थे और करते भी, लेकिन परीक्षित महाराज की कोई इच्छा नहीं थी, है ना। परीक्षित महाराज नहीं चाहते थे कि भगवान से मैं सेवा लूं, है ना, और इस चीज को समीक मुनि भी जानते थे कि परीक्षित महाराज कभी भी श्राप को काउंटरेक्ट नहीं करेंगे, उसका प्रतिरोध नहीं करेंगे। तो उसी प्रसंग में ये बताया गया कि जो भक्तों की जो सहिष्णुता होती है ना, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना, तो भक्त कितने सहिष्णु होते हैं, कितनी टॉलरेंस होती है उनकी, कितनी सहनशीलता होती है अपमानित होने, कोई उनका अपमान करे, है ना, अपमान शब्दों से अपमान होता है और फिजिकली भी अपमान होता है, है ना, शब्दों से कोई अपमान कर रहा है ना, ठगे जाने, चीट कर लिया, ठग लिया, शापित होने, शाप दे दिया, विचलित किए जाने, है ना, परेशान कर रहा है, उपेक्षित होने, नेग्लेक्ट कर दिया, है ना, ध्यान ही नहीं दे रहा, नेग्लेक्ट कर दिया, और जान से मारे जाने पर भी अगर फिजिकली कोई मार ही रहा है, मतलब उसको खत्म ही कर देगा, मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते, कभी भी उनके अंदर नास्य तत्प्रतिकुरु बनती, उनमें कभी भी प्रतिकार की भावना नहीं आती, बदले लेने की भावना नहीं आती, तो उसको बोलते हैं सहनशीलता। सहनशीलता और क्षमा, ये एक दोनों से क्या है, इंटर रिलेटेड है, जिसमें अगर क्षमा का गुण नहीं है, फॉरगिव नहीं कर सकता है, तो उसमें फॉरबियरेंस भी नहीं होगा, है ना। जिसमें क्षमा का गुण नहीं है वो सहनशील नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, चाहे प्रकृति के प्रभाव से या दूसरे लोगों के प्रभाव से या भक्तों के ही आपस में संबंध से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां हमको सहन करना पड़ेगा उस परिस्थिति का। और कौन व्यक्ति सहन कर पाएगा? जिसमें क्षमा का गुण है। जिसमें क्षमा का गुण नहीं है तो वो हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा विचलित रहेगा, या उसमें बदले लेने की भावना होगी। तो परीक्षित महाराज को ये विचार बिल्कुल आया ही नहीं, है ना। परीक्षित महाराज का जन्म, उनकी जो माँ है वो कौन है? उत्तरा, शुद्ध भक्त। उनके पिता कौन है? अभिमन्यु, शुद्ध भक्त। उनके दादा कौन है? अर्जुन, शुद्ध भक्त। तो ऐसे परिवार में जन्म हुआ है, उनके साथ क्या हो गया? इनजस्टिस हो गया, अन्याय हो गया, है ना। आजकल लोग, वो राहुल गांधी ने निकाला था ना, अब होगा न्याय, है ना। तो परीक्षित महाराज के साथ क्या हो गया? इनजस्टिस हो गया, अन्याय हो गया। लेकिन अन्याय का प्रतिकार कैसे किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। अन्याय के प्रतिकार के लिए 7 दिन पहले तो राज्य छोड़ दिया, और 7 दिन सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। तो हमारे जीवन में भी कई बार अन्याय होगा, तो उसको किस तरह से हमको रिएक्ट करना है, उसका कैसे हमको प्रतिकार करना है, वो आज हमारा चर्चा का विषय है। और ये क्षमा का गुण या सहनशीलता का गुण, वो हमारे अंदर कैसे आएगा? जिसमें क्षमा और सहनशीलता का स्रोत है उनसे वो गुण आएगा, वो अपने आप तो आएगा नहीं। तो किन के पास गुण स्रोत है, सोर्स ऑफ टॉलरेंस एंड सोर्स ऑफ फॉरगिवनेस कौन है? वो भगवान, क्योंकि भगवान हर चीज के सोर्स हैं, तो इसीलिए भगवान में ये अच्छे गुणों का भी, सभी अच्छे गुण के स्रोत हैं। तो जब हम भगवान से कनेक्ट होंगे उसके बाद हमारे अंदर ही सारे देवी गुण हैं, है ना। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुण तत्व समासते सूरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणान मनोरथे नास्ति धावतो भई। कि जो भगवान का अकिंचन भक्त है उसके अंदर सारे दैवी गुण आना प्रारंभ हो जाते हैं। और जो केवल अपने मनोरथ पर रहता है, मन के रथ पर रहता है, जो भगवान का भक्त नहीं है, उसके अंदर कोई भी अच्छे दैवी गुण नहीं हो सकते, है ना। तो अगर अच्छे गुण लाना है तो जो अच्छे गुण के सोर्स हैं उनसे अपने आप को लिंक करना पड़ेगा। अपने आप नहीं आ सकते, तो कितने भी अच्छा प्रवचन दे दे, कोई अच्छी मोटिवेशनल बुक हो, मोटिवेशनल लेक्चर हो, और उसमें बताया कि क्षमा करना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, है ना, टॉलरेट करना चाहिए, है ना। एक जीरो टॉलरेंस आया था ना बीच में, जीरो टॉलरेंस, है ना, टॉलरेट होना चाहिए, एकोमोडेट करना। लेकिन कब तक वो नहीं आएगा गुण? जब तक हम उस, जिनके पास ये गुण है उनसे हम कनेक्ट नहीं होंगे, है ना। तो जैसे परीक्षित महाराज महान भक्त है, ना? तो भगवान में भी ये क्षमा का गुण है, भगवान में भी सहनशीलता का गुण है। कैसे है भगवान में क्षमा का गुण? जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ हमसे अपराध होते हैं, है ना, या कुछ गलतियां होती है, तो भगवान क्षमा करते हैं, है ना। और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, है ना, बहुत सारे जो असुर हैं उनको भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान के भक्तों में भी ये महान गुण होते हैं। यस, ब्रह्मा जी को क्षमा किया, इंद्रदेव को क्षमा किया। तो ये सहनशीलता और क्षमा का गुण भगवान में ही है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने भी एक तरह से जगाई मदाई को क्षमा कर दिया। नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, तो नित्यानंद प्रभु को जगाई मदाई ने क्या किया? सिर पर मारा, मटका मारा, और उससे खून निकालने लगा, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको क्षमा कर दिया, है ना। तो ये गुण भगवान में है, इसीलिए ये जीव के अंदर आते हैं। और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर परिपूर्ण रूप से आ जाते हैं, है ना। जैसे पांच पांडव हैं, तो पांडवों के भी प्रति भी बहुत सारा अन्याय हुआ, है ना। उनको भीम को विष देने का प्रयास किया गया, करेक्ट। फिर लाक्षाग्रह में जलाने का प्रयास किया, उनकी जो पत्नी है उनको निवस्त्र करने का प्रयास किया गया, फिर अज्ञातवास हो गया, वनवास हो गया, उसके बाद भी दुर्योधन ने क्या बोला, कि मुझे सुई की नोक के बराबर भी तुमको जगह नहीं दूंगा। पांडवों ने बोला कि हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें केवल 5 गांव दे दो, उसमें हम अपना जीवन चला लेंगे। लेकिन दुर्योधन क्या बोला कि हम सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी, है ना। और इतना सब अत्याचार हुआ लेकिन पांडवों में कभी भी प्रतिकार की भावना नहीं आई। इवन जब पूरा महाभारत का युद्ध हो गया और भागवतम में आता है कि युधिष्ठिर महाराज क्या है, शोक कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज बोले कि ये सब महाभारत का युद्ध हुआ है, इतने सारे लोग मारे गए, वो उसका कारण कौन है, मैं हूं, है ना। तो जो भक्त होता है जब गलतियां होती हैं तो अपने ऊपर लेता है, और जब कुछ अच्छा होता है सेवा में तो दूसरों का नाम लेता है, है ना। लेकिन जिसमें परिपक्व नहीं है या अभक्त होता है, वो क्या होता है, जब गलतियां होती हैं तब दूसरे पर डालता है, इसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया, और जब कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट खुद लेना चाहता है, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज का गुण क्या है कि इतना सब अन्याय हो गया, है ना, इतना तो किसी के जीवन में हो भी नहीं सकता। और युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मुझे राजा बनने की इच्छा थी इसीलिए सब कुछ हुआ। तो फिर भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं भगवान, और भीष्म पितामह उनको समझाते हैं कि नहीं, आपकी वजह से नहीं हुआ है, है ना, क्योंकि ये पांडव ये कौरव है, उन्होंने भगवान का, भगवान के भक्तों का अपमान किया था, इसीलिए उनके साथ ऐसा होना था, है ना। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज समझ जाते, मतलब थोड़ा सा उनको सांत्वना होती है। लेकिन बाद में फिर क्या होता है, जब विदुर आते हैं और धृतराष्ट्र को बताते हैं और धृतराष्ट्र को संदेश देते हैं और धृतराष्ट्र के अपना घर त्याग देते हैं, फिर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि मैंने कितना अन्याय किया, धृतराष्ट्र है ना, अपने जो कौन चाचा अंकल धृतराष्ट्र और गांधारी, उनके साथ अन्याय किया और मेरी वजह से ये युद्ध हुआ। फिर से वहां पर नारद मुनि इनको समझाते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं सहनशीलता, इतना सब हो गया, है ना, घर में आग लगा दी, सोचो घर में आग लगा दी, अपमानित किया, मारने का प्रयास किया, सब कुछ कर दिया, लेकिन बदले लेने की भावना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भक्त होते हैं। जब ऐसे गुण आएंगे हमारे अंदर तभी तो भगवत धाम जाने के योग बनेंगे। अगर ऐसे गुण नहीं है तो भगवत धाम जाने के योग नहीं बने। क्यों? क्योंकि भगवत धाम में सब ऐसे लोग हैं, भगवत धाम में सब लोगों के पास ऐसे गुण हैं, और हमारे पास ऐसे गुण नहीं है, वहां पहुंच गए तो क्या करेंगे, हमको वापस भेज दिया जाएगा, है ना, युधिष्ठिर महाराज। और ऐसा होता भी है, एक बार अज्ञातवास में क्या होता है कि यक्ष आते हैं और जितने 100 कौरव हैं उनको बंदी बना लेते हैं, है ना, और ये खबर पहुंचती है 5 पांडवों के पास। तो भीम होते हैं उसमें बहुत प्रसन्न होते हैं, भीम बोलते हैं कि अच्छा हुआ, ये युधिष्ठिर महाराज हमको तो मारने देते नहीं है, तो यक्ष इनको मार देंगे। तो युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं, नहीं, जब हमारे आपस में लड़ाई है तो वो 100 हैं, हम 5 हैं, लेकिन कोई बाहर से आक्रमण करता है तो हम 105 हैं, तो आप चलो, हम 5ों चलते हैं और उनको दुर्योधन और दुशासन को छुड़ा के लेके आते हैं। तो अगर युधिष्ठिर महाराज के भाई इतना बोल देते उस समय कि चलो ठीक है हम शांत रहते, वो तो उनकी यक्ष और कौरवों के बीच में लड़ाई है, तो भी युधिष्ठिर महाराज का जो गुण है अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया, वो भी तब भी उनका वो गुण बना रहता। लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं, नहीं, उनको हमें बचाने जाना। तो ये भक्तों में गुण होते हैं ना, सहनशीलता, क्षमा, दुर्योधन को क्षमा कर दिया, दुशासन को क्षमा कर दिया, है ना। वो तो उन्होंने भक्तों का अपमान किया, है ना, द्रौपदी का अपमान किया, इसीलिए भगवान कृष्ण चाहते थे कि सारा जो कौरव वंश है उसका नाश हो जाए, है ना। फिर हरिदास ठाकुर, है ना, हरिदास ठाकुर भी कितना अपमानित किया गया, मारने का प्रयास किया गया, है ना, इससे जल्लादों ने, है ना, डंडे से और हंटर से चाबुक उससे कितना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि जो जल्लाद थे वो भी क्या है, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया बोले कि अगर आप मरे नहीं तो वो जो राजा हमको मार देगा तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, वहां पर एक तरह से समाधि ले लिया, है ना, एकदम निष्क्रिय हो गए। और जल्लादों ने क्या किया, हरिदास ठाकुर को उठाया और गंगा नदी में फेंक दिया, और बाद में फिर वो अपना जप करने लगा। तो क्षमा, है ना, फॉरबियरेंस, ये सहनशीलता का गुण है। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो हरिदास ठाकुर को अपमानित करने का प्रयास किया गया है ना। फिर श्रील प्रभुपाद है ना, श्रील प्रभुपाद ने भी बहुत सहन किया है ना, खासकर जब भारत में प्रचार किया और अमेरिका में एक साल प्रचार किया तो उसमें तो बहुत सारे उनको नेगलेक्ट करने का ही प्रयास किया गया है ना। वो एक रेंट एक घर में रहते थे तो घर वाले कहने लगे कि ये तो बहुत समय से रह रहे हैं, अब इनको हम और कहीं शिफ्ट कर देते हैं, हमारा घर का खर्चा बढ़ रहा है। जबकि श्रील प्रभुपाद ही उनके किचन में सब कुछ बनाते थे और उनके फैमिली वालों को खिलाते थे, लेकिन सब क्या बोले कि अभी इनको अभी शिफ्ट कर देते। फिर एक डॉक्टर मिश्रा के घर गए है ना, तो डॉक्टर मिश्रा ने भी थोड़े समय सहयोग किया, फिर वहाँ से भी बोला कि आप दूसरी जगह चले जाइए, बावरी में चले जाइए। फिर बावरी में गए तो हिप्पी लोग उन कई हिप्पियों ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन क्षमा, इससे पहले मैं उदाहरण बताया है कि अगर आप मेंटल हॉस्पिटल जाएंगे है ना, पागल खाने जाएंगे और कोई पागल व्यक्ति है आपका मजाक उड़ा रहा है या मारने का आतुर हो गया या कुछ भी कर रहा है, तो आपको पता है ये व्यक्ति क्या है, पागल है, तो आप एक्शन ही लेंगे। ये पागल है उससे तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे यही तो एक्सपेक्ट करेंगे कि पागल व्यक्ति यही इसीलिए तो पागल खाने में है। तो जो अभक्त है, जो भक्ति में नहीं है, वो सब क्या है, पागल है ना। तो आप प्रचार में जाएंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे तो लोगों का पागलपन दिख जाएगा, अलग अलग डिग्री का पागलपन होता है, किसी में कम होता है, किसी में मीडियम होता है, किसी में बहुत हाई होता है। तो अगर हमारे अंदर सहनशीलता क्षमा का गुण नहीं है तो क्या होगा, हम भी वो प्रतिकार है ना क्षमा नहीं कर पाएंगे है ना। ऐसे कुंती महारानी तो क्या बोलती है, विविधा संतु तात सत्सत तत्र तत्र जगत गुरु है ना, कि भगवान इतनी सारी विविधाएं आई, विविधाएं आती गई, अभी सारी विविधाएं खत्म हो गई हैं है ना, और युद्ध खत्म हो गया है, अभी भगवान कहाँ से जा रहे हैं, भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे हैं। तो कुंती महारानी क्या बोलती है कि भगवान मुझे और विविधाएं दो, और कष्ट दो, और कष्ट देंगे तो उससे क्या होगा, और कष्ट होंगे तो आप हमें बचाने आएंगे, और आप बचाने आएंगे तो आपके दर्शन होंगे, और आपके दर्शन होंगे तो इस जन्म मृत्यु में दोबारा नहीं आना पड़ेगा है ना। तो कोई ऐसे मांग सकता है कि हमें विविधाएं आए, हमें कष्ट आए, कोई नहीं मांग सकता। उसके लिए भी क्या चाहिए, उसके लिए एक जिगरा चाहिए, जिगरा है ना, अंदर कुछ भक्ति होना चाहिए, तब हम भगवान से मांग सकते हैं भगवान हमें कष्ट दो, सबके बस की बात नहीं है। अब भगवान कष्ट ऐसे देंगे, भगवान का कष्ट देने का भी तरीका क्या है, जैसे हम चाहते वैसे नहीं देंगे, जहां हमारी और फिर हम बोलेंगे भगवान इतना तो हमसे नहीं हो पा रहा, इतना सहन नहीं हो पा रहा है ना। तो कुंती महारानी है, पांडव है, श्रील प्रभुपाद है, हरिदास ठाकुर है ना, उनके अंदर ही गुण है, भगवान के अंदर गुण है, तो ये भक्तों के अंदर आने चाहिए, और हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं है ना। तो अगर हमारे अंदर ये गुण नहीं है तो कीर्तन या सदाहरि, हमेशा हम कीर्तन नहीं कर पाए है ना। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम में एक वृत्तांत आता है जिसमें एक ब्राह्मण है जिनका नाम है अवंती ब्राह्मण, उनकी जीवन में सब कुछ होता है, तिरस्कार करते हैं, अपमानित करते हैं, उनको मारने का प्रयास करते हैं, चीट कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, लेकिन उनकी मनोवृत्ति क्या होती है वो हम देखेंगे यहाँ पर, और फिर हम उनसे उनके वृत्तांत से सीख सकते हैं कि कैसे एक स्थिर मन, स्थित प्रज्ञ है ना, स्टडी माइंड एंड इंटेलिजेंस कैसे हम ला सकते हैं है ना। तो ये 11वां स्कंद है और 23वां अध्याय है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं कि अगर किसी के जीवन में बहुत ही अधिक एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई, एक्सट्रीम सिचुएशन मतलब कई तरह से एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती है, किसी का दिवाला निकल गया, पैसे खत्म हो गए, कुछ बचे ही नहीं, रोड पे आ गया, या किसी को बहुत मारा, बहुत पिटाई की, या किसी को बहुत अपमानित किया गया, बहुत ज्यादा अपमानित किया गया, एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन, घर वालों ने निकाल दिया, घर वालों ने अपमानित किया, तो उस समय पर हमारा क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, है ना। और एक्चुअली भगवान उसी के जीवन में ये सब परीक्षा लेंगे जो परीक्षा देने योग्य होगा। अगर जो परीक्षा देने योग्य नहीं है और उसकी परीक्षा ले ली तो क्या होगा, या तो वो नास्तिक बन जाएगा या कम्युनिस्ट बन जाएगा, प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं, है ना। तो परीक्षा भी क्या होती है, उन लोगों के साथ होती है जो थोड़ा, जिनका थोड़ा एक स्तर आगे है, उनके साथ भगवान परीक्षा लेंगे। और ऐसा हो सकता, संपत्ति पूरी खत्म हो गई। एक भक्त थे मायापुर में, तो मायापुर में बाढ़ आई और उनकी जितनी भी डिग्री थी वो गंगा नदी में बह गई, सारी डिग्री स्कूल से लेके कॉलेज तक की सारी डिग्री बह गई। अभी क्या करें, कोई डिग्री नहीं बची, है ना। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आएंगे, परिवार वालों ने बस अभी तुमको जो करना है वो करो, हमारा पैसा खत्म होगा, कुछ भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है। मतलब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अभी तो हमारे साथ बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, थोड़ा सा किसी का सिर दर्द हो गया, किसी का पेट दर्द हो गया, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, है ना, किसी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, किसी का जॉब नहीं लगा, किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ, अभी तो ये सब चीज़ें हो रही। लेकिन एकदम एक्सट्रीम चीज़ें आ जाएं उस समय क्या करेंगे। तो भगवान क्या है, धीरे धीरे टेस्ट लेते हैं, उसकी सहनशीलता को क्या हो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, स्टेप बाय स्टेप टेस्ट लेते हैं। तो जो अवंती ब्राह्मण के साथ टेस्ट हुआ वो तो बहुत ही एक्सट्रीम था, हम देखेंगे बहुत ही एक्सट्रीम टेस्ट था। तो भगवान बोलते हैं, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर सके, है ना। तो शब्द और बाण एक बार छूटने के बाद वापस नहीं आता, है ना। द्रौपदी, उन्होंने क्या बोला था, अंधे का पुत्र अंधा, पर एक स्टेटमेंट बोला और क्या हुआ, पूरी महाभारत हुई। तो जो अपमानजनक शब्द हैं वो सब सहन नहीं कर पाते। आगे भगवान बोलते हैं, पैने बाण छाती को भेद कर हृदय तक पहुंचने पर उतना कष्ट नहीं देते जितने कि असभ्य पुरुषों द्वारा बोले जाने वाले कटु अपमानजनक शब्द रूपी तीर जो हृदय के भीतर तक धस जाते हैं। तो बाण हमको इतना कष्ट नहीं देंगे जितने अपमानजनक कष्ट हमको, अपमानजनक जो शब्द हैं वो कष्ट देते हैं। इसका साक्षात्कार है आप लोगों को, कभी किसी ने कुछ बोल दिया हो, रात में नींद नहीं आएगी, है ना, और बस वही सोचते रहेंगे कैसे उसने मुझे बोल दिया है, उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, उसको मजा चखाऊंगा। हे उद्धव, इस संबंध में एक अत्यंत पावन कथा कही जाती है जिसे मैं तुमसे कहूंगा, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार किसी सन्यासी को दुर्जनों द्वारा नाना प्रकार से अपमानित किया गया, किंतु उसने धैर्यपूर्वक स्मरण किया कि वह अपने ही विगत कर्मों का फल भोग रहा है। मैं तुमसे ये इतिहास तथा उसने जो कुछ कहा था उसे सुनाऊंगा, है ना। तो एक सन्यासी थे अवंती, अवंती अवंती मतलब मालवा, उज्जैन को भी अवंतीपुर बोलते हैं। तो मालवा क्षेत्र के एक सन्यासी थे जिनका बहुत तरह से अपमान किया गया, लेकिन उन्होंने धैर्यपूर्वक ये स्मरण किया कि जो विगत कर्म है मेरे वो अभी फलित हो रहे हैं, है ना। अब वो कर्म फल क्यों बने हैं, वो मेरे कारण ही बने, उसका कारण कोई दूसरा नहीं है। वो तो जो कर्म फल मुझे अपमान किया जा रहा है, वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो घटना इंस्ट्रूमेंट बन रही है मेरे कर्म फलों को फलित करने के लिए। वास्तव में वो व्यक्ति जो अपमान कर रहा है वो अपमान नहीं कर रहा है, वो तो मेरा कर्म फल था, उस व्यक्ति के थ्रू मुझे आज अपना कर्म फल मिल रहा है ना। तभी तो ये जो अवंती ब्राह्मण था वो बहुत ही धनी था। अब पहले, उसके पहले की कहानी, बहुत ही ब्राह्मण था, धनी था, और उसका बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा व्यापार था, बहुत ही मालामाल था, है ना, और हमेशा व्यापार कार में लगा रहता था। लेकिन बहुत ही कंजूस था वो, कंजूस, कामी, लालची और क्रोधी, है ना। तो पूरा 21वीं सदी का बिजनेसमैन था, है ना, सारे अवगुण थे उसमें। फिर वो धर्म का पालन भी, और जो उसको पैसा मिला है, जो उसके पास धन था, उसको इंद्रिय तृप्ति में भी नहीं लगाता था। कंजूसी क्या होती है, इकट्ठा करके रखता है। तो वो धर्म के कार्य में भी नहीं लगाता था और इंद्रिय तृप्ति में ही लगाता था, और जो परिवार जन थे उनको ही भोग कर नहीं देता था। तो परिवार वाले भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए, है ना। और जो परिवार जन थे और जो अतिथि आते थे उनका सत्कार भी नहीं करता था, वो उनका आदर भी नहीं करता था, है ना। तो उससे क्या हुआ, चूंकि वह हृदय से कठोर तथा कंजूस था, इसलिए उसके पुत्र, उसके ससुराल वाले, उसकी पत्नी, उसकी पुत्रियां तथा नौकर उसके प्रति वैर भाव रखने लगे। ऊब जाने के कारण वे उससे कभी भी स्नेह पूर्ण व्यवहार नहीं करते, है ना। तो सब क्या हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए घर वाले, कोई उसके साथ अच्छी तरह व्यवहार नहीं करता, है ना, कोई स्नेह पूर्ण व्यवहार नहीं करता। और उसने धर्म का अनुशीलन नहीं किया, जो गृहस्थ लोगों के लिए जो यज्ञ है अलग तरह के, वो उस यज्ञ का भी उसने पालन नहीं किया। तो क्या हुआ, उसका धीरे धीरे जो धन था वो अभी खत्म होने लगा, उसका जो जितना भी पुण्य था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, है ना। और देवताओं की उपेक्षा करने के कारण उसका पुण्य और संपत्ति का जो भंडार हो गया वो पूरा धीरे धीरे खाली हो गया। तो उसका धन क्या हुआ, कुछ संबंधियों ने चुरा लिया, कुछ चोरों ने चुरा लिया, कुछ भाग्य की वजह से खो दिया उसने, कुछ काल की वजह से खो दिया, और कुछ सरकारी अधिकारियों ने ले लिया, है ना। तो यहाँ आचार्यगण बता रहे हैं कि भाग्य की वजह से कैसे चला गया, कि उसके घर में आग लग गई और उसके खेतों में आग लग गई, है ना। और काल की वजह से कैसे चला गया, कि बारिश नहीं हुई तो उसकी जो सारी फसल थी वो नष्ट हो गई, तो उसकी वजह से सारा उसका जो धन था वो सब खत्म हो गया, है ना। मतलब मनी इज स्वीटर देन हनी, जो पैसा है वो शक्कर चीनी से भी ज्यादा है, शहद से भी ज्यादा मीठा है ना। सब पैसे के लिए भाग रहे हैं, सब पैसा पैसा पैसा, रजोगुण है ना, पैसा पैसा। अंत में जब उसकी संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई तो वह ब्राह्मण जिसने कभी भी धर्म तथा इंद्रिय भोग नहीं किया था अपने पारिवारिक जनों से उपेक्षित किया जाने लगा, है ना। तो वो तो एक ये है कि पहले वो धन का उपयोग नहीं करता था और परिवार जनों को भी भोग करने नहीं देता था, इसलिए परिवार वाले भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए। लेकिन अगर परिवार जनों को भोग भी करने देता और बाद में उसके पास पैसा नहीं बचता तो परिवार वाले क्या बोलते, ये बूढ़ा तो क्या खांसता रहता है, ये कोई काम का नहीं, इसको आजकल क्या है वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, या घर में भी रखते हैं तो घर में एक कोना देते हैं, एक कमरे में एक कोना रहते हैं जहाँ बूढ़े माता पिता रहते हैं, है ना। वो वृत्तांत है ना महाभारत में, कि एक व्यक्ति होता है वो युधिष्ठिर महाराज के पास में आता है दौड़ता दौड़ता, बोलता है कि एक घड़ा था और एक घड़े ने 10 घड़ों को भर दिया, और अभी क्या हो रहा है कि 10 घड़े भी एक घड़े को नहीं भर पा रहे। तो उसमें बाद में बताते हैं कि एक घड़ा कौन था, पिता, उसने 10 घड़ों को भर दिया, 10 पुत्रों को बड़ा कर दिया, लेकिन अभी 10 पुत्र मिलके भी उस पिता का पालन पोषण नहीं कर पा रहे। तो ऐसा कलयुग आने वाला, ऐसा कलयुग आएगा, है ना। तो ये तो बहुत पहले की बात है, भगवान ये द्वापर में सुना रहे हैं, द्वापर के पहले की बात है अवंती ब्राह्मण का, है ना। तो परिवार वाले क्या करते हैं ऐसे लोगों को, निग्लेक्ट कर देते हैं, ये तो पैसा नहीं कमाता, है ना। और इवन ऐसा भी होता है कि घर में अगर कई भाई हैं, अगर एक भाई पैसा नहीं कमा रहा है अच्छा, तो कंपेयर करते हैं, अरे देखो तो वो तो वहाँ चला गया, वो तो ये कर रहा है, वो तो ये कर रहा है, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, है ना, कंपेयर करेंगे। और हमेशा उसको प्रताड़ना देते रहते हैं, हमेशा खरी खोटी सुनाते रहते हैं। उनको लड़के से प्रेम नहीं, उनको किससे प्रेम है, पैसे से प्रेम है। अगर लड़का पैसा ला रहा है तो घर वाले हाँ बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा प्लेसमेंट हो गया, अच्छी जॉब लग गई। बहुत, अगर बच्चे का जॉब नहीं लगा है, सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या करता है? पढ़ने गया था, क्या किया? बस हरे कृष्णा करता रहा। तो वास्तव में वो लड़की से प्रेम नहीं है, अगर हम गहराई में जाके देखें तो। अगर लड़के से प्रेम होता तो कभी उससे पूछते कि वास्तव में तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या करना चाहते हो, एक बार उससे पूछते। अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चों के ऊपर लादते नहीं। अगर बच्चा समझ रहा है कि कृष्ण भक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है और केवल हमारा नहीं है, परिवार जनों का भी है, तो अगर वास्तव में परिवार जनों को, घर वालों को बच्चे से प्रेम है और बच्चे को पता है कि यस कृष्ण से प्रेम करने पर मेरा और घर वालों सबका भला होने वाला, तो माता पिता परिवारजन कभी रोकेंगे नहीं। अगर क्योंकि माता जो परिवारजन है उनको किससे प्रेम है? अपनी इंद्रिय तृप्ति से प्रेम है। और इंद्रिय तृप्ति से प्रेम होगा तो बच्चा क्या था? मेरे इंद्रिय तृप्ति का एक साधन था, और अब ये भक्त बन गया तो मेरी इंद्रिय तृप्ति का क्या है उसमें जुटा नहीं पाएगा, इसीलिए उनको क्रोध आता कि अरे ये कैसे कैसे भक्ति कर रहा, कैसे माला कर रहा। ऐसे अभी 3-4 साल में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो गए जहाँ बच्चे हैं भक्ति करना चाहते हैं लेकिन परिवार जन वाले भक्ति करने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये जो बच्चा है, लड़का है लड़की है, ये हमारी संपत्ति है, हमारा इंद्रिय तृप्ति कराने के लिए। तो अगर कोई हमारी संपत्ति को छीन रहा है तो ये क्या हमारा दुश्मन। तो ये ऐसे जो अवंती ब्राह्मण के जो परिवार जन वाले हैं वो अभी उसको धिक्कारने लगे, और ऐसा हालत हो गया उसका कि वो जो अवंती ब्राह्मण है वो रोने लगा। अपनी सारी संपत्ति खो जाने से उसे महान पीड़ा तथा शोक हुआ, उसका गला आंसुओं से रुध गया और वह दीर्घ काल तक अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहा। है ना, ऐसे जो रो रहा है और वो सोच रहा संपत्ति के बारे में सोच रहा है ना। और जब उसकी ऐसी हालत हुई कि सब लोगों ने उसको निग्लेक्ट कर दिया तो उसके अंदर क्या आया? तब उसके मन में वैराग्य की प्रबल अनुभूति जागृत हुई और उसके अंदर क्या हुआ? वैराग्य आया। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था, कुछ तो उसने पुण्य किए होंगे, तब उसके अंदर क्या आ गया? वैराग्य आ गया कि मैं कर क्या रहा था पूरे जीवन में, एक तो संपत्ति और जो परिवारजन, उन दोनों के प्रति क्या आ गया? उसको वैराग्य आ गया। तो कभी कभी भगवान क्या करते हैं सबके जीवन में? फोर्स्ड रिनन्सिएशन लाते हैं। हम स्वेच्छा से वैराग्य नहीं आ पाता तो भगवान क्या करते हैं? बलपूर्वक जीवन में वैराग्य लाते हैं। और ये अवंती ब्राह्मण के जीवन में हुआ। हमारे जो अटैचमेंट होते हैं भगवान क्या करते हैं? उस पर आरी चलाते हैं, ऐसी आरी चलाएंगे, इतना कष्ट हो गया। और वो अगर हमने सहन कर लिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल है ना। ओके, फिर अवंती ब्राह्मण बोलते हैं, अवंती ब्राह्मण पैसे के बारे में बता रहे हैं कि पैसा क्या करता है लोगों के जीवन में, है ना। अवंती ब्राह्मण इस प्रकार बोला, हाय क्या दुर्भाग्य है मेरा, मैंने उस धन के लिए इतना कठिन परिश्रम करते हुए व्यर्थ ही अपने को कष्ट पहुंचाया जो ना तो धर्म के लिए ना था ना ही भौतिक भोग के लिए था। तो मैंने उस धन को कमाने के लिए इतना कठिन परिश्रम किया, है ना। इसलिए भौतिक जगत को क्या बोलते हैं? पावर्ग। पावर्ग बोलते हैं पा फा भा फिर पा फा भा वा मा। तो परिश्रम है ना, इतना कठिन परिश्रम किए जा रहे हैं। अब परिश्रम करते करते क्या आता है? जैसे कभी घोड़ा देखा होगा, घोड़ा अगर बहुत परिश्रम करे तो क्या होता है? उसके मुंह से झाग आने लगता है, फेन आने लगता है। तो ऐसे आजकल व्यक्ति इतना परिश्रम कर रहा है कि वो झाग आने लगता है पूरा। सामान्यतः कंजूसों की संपत्ति उन्हें कभी सुख नहीं दे पाती, इस जीवन में यह उनका आत्म पीड़न करती है और मरने पर उन्हें नरक भेजती है। तो बता रहा है कि ये जो लालच ग्रीड, जो लोभ का गुण होता है लोगों के अंदर, वो कितना कष्ट देता है। जो लोभी व्यक्ति होता है इस संसार में कभी भी सुखी नहीं रह पाता। और लोभ ऐसा गुण है कि आपको कितनी भी संपत्ति मिल जाए, कितनी भी आप भौतिक रूप से अगर एक उच्च स्थिति पर आ जाए, अगर लोभ है तो कभी भी आप संतुष्ट नहीं रह सकते। लोभ का उल्टा क्या है? संतुष्टि, है ना। और संतुष्टि का उल्टा क्या है? लोभ। तो लोभ का गुण कैसा है? जैसे एक बहुत ही सुंदर पुरुष है या बहुत ही सुंदर स्त्री है और उसमें सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन उसके चेहरे पर क्या है? कोढ़ है, कोढ़ का दाग है। तो क्या होगा? उसकी सारी सुंदरता, सारे अच्छे गुण खत्म। प्रसिद्ध व्यक्ति की जो भी शुद्ध ख्याति होती है, गुणवान में जो भी प्रशंसनीय गुण होते हैं, वे किंचित मात्र लालच से उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह आकर्षक शारीरिक सौंदर्य रंच मात्र श्वेत पुष्ट से नष्ट हो जाता है। तो कोढ़ का अगर थोड़ा भी दाग है तो खत्म। अभी पैसा कमाने में कहां कहां कितनी कठिनाई होती है, किस किस स्टेप पर कठिनाई होती है, वो सब कुछ बता रहे हैं। कहां कहां कठिनाई होती है पैसा कमाने में, तो ये मोटिवेशनल सेमिनार है जिसमें आपको पूरी तरह से डीमोटिवेट किया जा रहा है। तो कहां कहां कठिनाई होती है कमाने में, पहले तो उस स्थिति तक आने में कि हम कमाने के योग्य हो जाए, तब तक कठिनाई होती होती कि नहीं? अभी आप लोगों का वो फेज चल रहा है, ठीक है, कि अभी आगे चल के कमाएंगे तो उसके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। फिर प्राप्ति में, अभी वहाँ उस स्थिति में आप पहुँच गए, अभी वहाँ भी बहुत कंपटीशन है। वहाँ पर जैसे एक डिवोटी है सहदेव प्रभु, वो अपनी पुस्तक में बता रहे थे कि अगर अमेरिका में इतना कंपटीशन है, मतलब अगर आप बीमार हैं और आपने छुट्टी ले लिया तो वो बोलते हैं कि आप अभी जॉब ही छोड़ दीजिए, किसी दूसरे को रख लीजिए। तो अगर आप बीमार भी हैं तब भी आपको जॉब पर आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि बाकी लोग इतने सारे लाइन में खड़े हुए हैं। तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इतनी ज़्यादा होड़ है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में आप गए, प्राइवेट में तो क्या है, अगर आप बीमार हैं तो बोले ठीक है आप अभी छुट्टी ले लो, हमेशा के लिए छुट्टी लेता हूँ, हम किसी दूसरे को रख लें। तो कमाई में बहुत, फिर प्राप्ति, फिर वृद्धि, फिर बढ़ाने में बहुत कष्ट है। प्रमोशन, करेक्ट, उसकी वृद्धि करने में बहुत कष्ट है। फिर रक्षा, अभी जो मिल गया है उसमें बहुत कष्ट है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसी में लगा देते हैं, FD चालू कर देते हैं, है ना। रक्षा में बहुत भय, और वही चिंतन चलता रहता है ना। पहले लोग इतना भय नहीं होता था, पहले लोग कैसे रक्षा करते थे, घर में आंगन में एक गड्ढा खोदते थे, उसके अंदर अपना सोना सब रखते थे। आजकल तो क्या हो गया है, और CCTV कैमरा भी लग गया है, ताले भी लग गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी है, फिर भी चोरी हो जाती है ना। और कभी कभी चोरी ऐसे होती है, एक म्यूचुअल पड़ा वो होते ना दरोगा, पुलिस उसकी चोरी हो गई। तो पुलिस वाला था। क्या हुआ कि पुलिस वाले की और चोर की आपस में थोड़ी वो होती है, बनी होती। तो पुलिस वाले ने कुछ अपना कुछ हफ्ता नहीं दिया था चोर को, तो चोरों ने उसी घर चोरी कर दिया और सारा धन लेके चले। ऐसे कई होते हैं, वो कई इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, उन्हीं के चोरी हो जाती है। तो रक्षा, व्यय, जब उसको खर्च करते हैं तो उसमें बहुत चिंता होती है, खर्च में चिंता होती है ना। फिर हानि तथा उपभोग में भारी श्रम, भय, चिंता तथा भ्रम का अनुभव होता है। तो ये सब अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे वे नाश उपभोग आयासा त्रासा चिंता भ्रमो नृणाम। तो इतने हर पैसा कमाना, उसका वृद्धि करना, उसको सिक्योर रखना, उसको व्यय करना, उसको खर्च करना हर स्टेप पे क्या है? चिंता, भय, श्रम और भ्रम, ये चार चीजें होती हैं। फिर क्या होता है, जिसके अंदर ग्रीड होता है उसमें 15 अवगुण आ जाते हैं, जिसके अंदर लोभ होता है उसके अंदर 15 अवगुण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दुर्व्यवहार, काम, क्रोध, चिंता, दर्प, झगड़ा, लड़ाई, शत्रुता, ईर्ष्या, अविश्वास, जुआ खेलना, नशा करना। ये 15 दुर्गुण संपत्ति लोभ के कारण मनुष्यों को दूषित बनाने वाले हैं। नहीं तो अलग अलग तरह के 15 अवगुण आते हैं, जिसमें पैसे के प्रति बहुत ज्यादा क्या होता है? लोभ होता है। और हम देख सकते हैं आजकल के लोगों में। और फिर घर वाले क्या करते हैं, इसके बाद पैसा नहीं होता, घर वाले दुश्मन बन जाते हैं। यहां तक कि मनुष्य के सगे भाई, पत्नी, माता पिता, मित्र जो उससे प्रेम से बद्ध थे, तुरंत ही अपना स्नेह संबंध तोड़ लेते हैं और एक कौड़ी की कारण शत्रु बन जाते हैं। इसके बाद पैसा नहीं है, इसीलिए एक कवि है जिन्होंने बोला है कि कलयुग में सबसे बड़ा अवगुण क्या है? निर्धनता। तो सब उससे मुंह फेर लेंगे ना, सबसे बड़ा अवगुण उसके पास क्या होगा? निर्धनता। लेकिन अगर हम ब्राह्मण संस्कृति देखें तो पहले जो ब्राह्मण होते थे वो स्वेच्छा से निर्धनता को स्वीकार करते थे, क्यों? जिससे वो सत्य का प्रचार कर सके। और आज जो निर्धन है उसको अवगुणी माना जाता है, चाहे वो कितना भी गुणवान होगा, कितना भी संस्कारी होगा, लेकिन अगर पैसा नहीं कमा रहा है तो सब घर वाले ऐसे खरी खोटी सुनाएंगे। और कोई अगर घर में ऐसा है जो अच्छा पैसा कमा रहा है लेकिन संस्कारी नहीं है तो बोला ठीक है, थोड़ा बिगड़ा है, क्या है, इतना बुरा तो नहीं है। फिर ये तो घर वाले हुए। सगे संबंधी क्या करते हैं? ये सगे संबंधी तथा मित्रगण थोड़े से भी धन के लिए अत्यंत उद्वेलित होते हैं और क्रोध से आग बबूला बन जाते हैं और क्षण भर में ही उसका परित्याग करके उसकी हत्या तक की नौबत आ जाती है, मारने को भी तैयार हो जाते हैं धन के लिए। और ऐसा होता है ना, पारिवारिक झगड़े होते हैं ना, दो भाई के बीच में झगड़े हैं, दो तीन भाई के बीच प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होते हैं, मार दिया, जला दिया। आप न्यूज पेपर, ये कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, आप न्यूज पेपर उठा लेना और उसमें देख लेना कितने प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं, कितने पैसे के लिए झगड़े होते हैं। लोग एग्जाम में पास नहीं हुए, सुसाइड कर लिया, जॉब नहीं लगी, सुसाइड कर लिया, ऐसा होता है। उसका एग्जाम पास नहीं हुआ था तो वो था ना होटल ताज मुंबई में, उसकी 15 या 16 माले पे चढ़कर जंप लगा दिया। मतलब कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुका होगा उसको कि अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गया। तो ये जो पैसा है, संपत्ति है, हर स्टेप पर नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना वृंदावन भजन में, प्रभुपाद बोले कि वृंदावन में हूँ और मेरे पास मेरी पत्नी थे, मेरे बच्चे थे, बहुत सारे सगे संबंधी थे, अभी वो कहाँ है? क्योंकि मैं निर्धन हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो सभी लोगों ने मेरा तिरस्कार कर दिया, है ना। तो वास्तव में भौतिक संबंध होते हैं केवल पैसे के आधार पर और कुछ नहीं, पैसा और उसका एक्सटेंशन। जो वास्तव में संबंध होता है वो आध्यात्मिक संबंध होता है, भगवान के भक्तों के बीच में होता है। ये परिवार वाले या सगे संबंधी भक्त हैं तो अलग बात है, वास्तव में संबंध होता है आध्यात्मिक संबंध, अदरवाइज जितने भी संबंध है केवल पैसे के आधार पर। हम अपने घर वालों को भ्रम में रख रहे हैं और घर वाले हमको भ्रम में रखे हुए और एक दूसरे का भ्रम बढ़ाना चाह रहे हैं। घर वाले सपने में जी रहे हैं कि हाँ बेटा हमको खुश रखेगा पैसा लाकर, और हम माता पिता के भ्रम को, सपने को बढ़ा, पिताजी आप सपने, हाँ बहुत अच्छा सपना देख रहे हैं, मैं आपके सपनों को पूरा करूंगा, मैं आपके सपनों का पूरा करूंगी, आप सोते रहो। और कोई अगर भक्त बन गया और सपने को थोड़ा सपने से उठाने का प्रयास किया तो बोलेंगे अरे सोने दो, अच्छा सपना देख रहा था। तो ये सब भौतिक रिलेशन, ये क्लियर है। फिर फिर अवंती ब्राह्मण और शोक करते हैं और फिर चार पांच श्लोकों में बताते हैं कि जो मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, और बताते हैं कि तीन चीजें व्यक्ति को तुरंत भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए, क्या? धन, यौवन तथा बल। किसी के पास अगर धन है, कि अगर कोई यूथ है, मतलब यूथफुलनेस है, यौवन है और बल, शारीरिक बल है, तो तुरंत ही इन तीन चीजों को तुरंत भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। अगर इन तीन चीजों को भगवान की सेवा में उपयोग नहीं किया तो व्यक्ति उतना ही ज्यादा कष्ट में रहेगा, उतना ही ज्यादा पछताएगा आगे चल के कि मैंने उस समय का उपयोग क्यों नहीं किया, अभी समय नहीं बचा। अवंती ब्राह्मण यही बोल रहे हैं आगे कि भगवान अभी मेरे पास समय बचा ही नहीं है, तो ये धन है, यौवन है और बल, ये मैंने ऐसे गंवा दिया। यदि मेरे जीवन का कोई समय शेष है तो मैं तपस्या करूंगा और अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम से कम करूंगा। अब मैं और अधिक भ्रम में न पड़कर जीवन की समग्र आत्महित में लगकर अपने आप में तुष्ट रहूंगा। तो इस तरह से अवंती ब्राह्मण क्या करते हैं, जिस गांव में रहते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं और फिर अलग अलग गांव में, अलग अलग नगरों में भिक्षा मांगना चालू करते हैं। और वो जो उनका आध्यात्मिक स्तर था वो उसको दिखाते नहीं, एक भिक्षुक की तरह रहते हैं, भिक्षा मांगते हैं, और जो उनकी आध्यात्मिक प्रगति है उसको वो छुपा के रखते हैं। फिर क्या होता है, हे दयालु उद्धव, भगवान उद्धव को बोल रहे हैं, उस वृद्ध मलिन भिखारी के रूप में देखकर उद्यमी लोग अनेक प्रकार से उसे अपमानित करने लगे। तो बहुत सारे लोग उसका, अवंती ब्राह्मण है उनका, अपमान करने लगे। कैसे अपमान करने लगे, कुछ लोग उनका संन्यास दंड छीन लेते और उसको फेंक देते, कुछ उनका भिक्षा मांगने का पात्र था उसको छीन लेते, है ना, कोई उनकी जपमाला छीन लेते, कोई उनका जो आसन था जिस पर बैठकर वो जप करते थे वो आसन छीन लेते और फिर उसको ऐसे दिखाते, ले लो ऐसे ऐसे बच्चों को दिखाते हैं ना, फिर दूर कर लेते फिर दिखाते हैं। तो इसके उस तरह से वो अवंती ब्राह्मण के साथ उनका दंड ले लिया, उनका कमंडू ले लिया, उनकी जपमाला छीन ली। आपके साथ किसी ने किया ऐसा आज तक? नहीं किया। आसन ले लिया और ऐसे चढ़ाने लगे, देखो देखो ये माला है। फिर वो खाने के लिए बैठे तो जो प्लेट में वो खा रहे थे, कोई व्यक्ति आया और उसमें उसने पेशाब कर दिया, जिस जो खा रहे थे उसके ऊपर पेशाब कर दिया और सिर पे थूक दिया, सिर के ऊपर थूक दिया, चेहरे के ऊपर थूक दिया और जो खा रहे थे उसके ऊपर थूक दिया। और फिर उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया कि अभी मैं किसी से यहां बात करूंगा नहीं। तो लोग उकसा रहे थे, बार बार तंग कर रहे थे कि बोले, कुछ ना कुछ बोले, तो कुछ लोग आए और लाठी लेके पीटने लगे उसको, क्या बोल बोल, अभी तो बोलना पड़ेगा, अभी तो बोलना पड़ेगा, और मार रहे, वो और शांत है तो और मारे जा रहे हैं उसको। और अन्य लोग उसे यह कहकर प्रताड़ित करने लगे कि ये आदमी चोर है, है ना, बोलेगा ये चोर है, ये बोल नहीं रहा। अन्य लोग उसे रस्सी से बांध देते, कई लोगों ने रस्सी से बांध दिया उसे, हाथ पैर बांध दिए, बांध इसे बांधो, इसे बांधो, ऐसे बोलने लगे। तो इस तरह से अपमान करना चालू किया। अभी क्या हो गया कि जितनी भी उनकी थोड़ी बहुत भी भौतिक आसक्ति थी, भगवान उसको अभी दूर कर रहे हैं, थोड़ा भी जो अटैचमेंट है, समझ में तो आ गया घर वालों ने क्या किया है, तो अभी भिक्षा मांगना चालू कर दिया है। लेकिन जो, क्योंकि कुछ आसक्ति ऐसी होती है जो हम खुद भी नहीं देख पाते हैं, तो भगवान क्या आते हैं, ऐसा प्रयोजन करते हैं। कुछ लोग बोलने लगे, यह व्यक्ति तो ढोंगी और ठग है, यह व्यक्ति धर्म को इसीलिए पैसा बनाए हुए है क्योंकि इसने अपनी सारी संपत्ति गवा दी है और इसके परिवार वालों ने इसे बाहर निकाल दिया, है ना, ये ढोंग कर रहा है ना। कुछ लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते, जरा देखो तो इस अत्यंत शक्तिशाली ऋषि को, यह हिमालय की तरह धैर्यवान है। और ये बगुला होता है, बगुला सुना, बगुला क्या करता है, एक होता है बगुला एक होता है हंस, तो बगुला क्या करता है,
मछलियों से
यानी उससे पहले क्या करता है? नहीं, एक पैर पे खड़ा होता है बगुला पानी में, एक पैर पे खड़ा होता है, बहुत ही शांत, ऐसा लगता है कि वो तपस्या कर रहा है। लेकिन वो शांत क्यों खड़ा होता है? कि जैसी मछली आएगी तुरंत तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं अवंती ब्राह्मण का, कि बगुले की तरह तपस्या कर रहा है ना, ये तो केवल एक ढोंग कर रहा है। कुछ लोग उस द्विज ब्राह्मण को जंजीरों से बांधकर पालतू पशु की तरह बंदी बनाकर रखते हैं। कई लोग उसको ऐसे पालतू पशु की जंजीर बांध दिया और उसको ऐसे। तो इस तरह से अलग अलग यातनाएं दी गई, तिरस्कार, छिपता छपता, है ना, नेग्लेक्ट, मारना, सब कुछ किया गया। फिर यहां से बोलता है, वह ब्राह्मण समझ गया कि उसका सारा कष्ट अन्य जीवों से, प्रकृति की उच्च शक्तियों से तथा अपने ही शरीर से जन्य दुर्निवार है, मतलब इसको हटाया नहीं जा सकता क्योंकि यह विधाता द्वारा निश्चित हुआ है, है ना। अभी बहुत ही तात्पर्य है। उस ब्राह्मण को अनेक निर्दय व्यक्ति सताते और उसका शरीर ज्वर, भूख, प्यास, थकान इत्यादि से पीड़ित भी रहता। तो लोग सता भी रहे थे और उसको खुद भूख प्यास लग रही थी, सर्दी गर्मी हवा वर्षा। ब्राह्मण की समझ में आ चुका था कि उसका कष्ट भौतिक शरीर से अपनी झूठी पहचान बनाने के कारण है, बाह्य घटना तथा उसके शरीर की अन्योन क्रिया से नहीं है। तो अवंती ब्राह्मण को समझ में आ गया कि मुझे ये कष्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी पहचान शरीर से बना के रखी, ना तो ये व्यक्ति, ना इनके शब्द, ना ये परिस्थिति, ना सर्दी गर्मी मेरे कष्ट का कारण है। इस कष्ट का कारण क्या है? कि मैंने अपनी पहचान शरीर से बना के रखी है ना। वह बाह्य स्थिति से तालमेल बैठाने के प्रयास की बजाय वो बाहर के लोग कैसे एडजस्ट हों इसको सोचने के बजाय, कभी होता है ना जो हमको कष्ट देते हैं या परिस्थिति कष्ट देती है तो उसको हम एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। तो अवंती ब्राह्मण ने वो कुछ नहीं किया, वह बाह्य स्थिति से तालमेल बैठाने के प्रयास की बजाय कृष्ण भावनामृत से तालमेल बैठा रहा था और इस तरह नित्य आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को अनुभव करना चाह रहा था, है ना। तो यहां पर उसको रियलाइजेशन हुआ कि मेरे कष्टों का कारण क्या है। तो हम अभी परसों इस चीज को डिस्कस करेंगे, अवंती ब्राह्मण का गीत। अभी वो अवंती ब्राह्मण एक कई श्लोक कई प्रार्थना करेंगे वो, कि वास्तव में इस संसार में अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कष्ट हो रहा है तो उसका कारण कौन है? देवी देवता है, व्यक्ति है, खुद है, शरीर है, मन है, क्या है, कष्ट का कारण कौन है? क्योंकि अगर हमको पता चल गया कि ये चीज कष्ट का कारण है तो हम उस पर कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर हमको पता ही नहीं चला कि हमारे कष्टों का कारण कौन है तो हम क्या है, टेम्परेरी क्षणिक उपचार के पीछे भागते रहेंगे और हमेशा कष्ट में रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, हो सकता है।
तो
सतयुग को माना जाता है कि प्रधान रूप से सतोगुण है, लेकिन फिर भी राक्षस या इस तरह की घटना क्यों होती? तो प्रधान रूप से सतयुग जो है उसमें सतोगुण की प्रधानता है, लेकिन कुछ राक्षस ऐसे लोग आ सकते हैं। जैसे कलयुग है तो कलयुग में प्रधानता किसकी है? रजोगुण और तमोगुण की। लेकिन फिर भी कलयुग में लोग भक्ति कर रहे हैं ना, शुद्ध सतोगुण के स्तर पर है ना, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम है। कलयुग में भी गोल्डन एज आया ना चैतन्य महाप्रभु का। इन जनरल कलयुग क्या है? कलह का युग है, लेकिन कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं सतोगुण में। इसी तरह इन जनरल सतयुग में सब परमहंस हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं।
परिचित ध्यान तोड़ने
की, तो उसमें जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन भी जब अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं और गांडी हाथ से खिसकने लगता है ना, रोम एकदम कांप जाते हैं, है ना। तो अभी अर्जुन ने तो बहुत सारे युद्ध किए, अग्निदेव को परास्त किया, इंद्रदेव को परास्त किया, बहुत सारे युद्ध किए, लेकिन सगे संबंधी को देखकर है ना अश्रुपूरित हो रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी भगवान भगवद्गीता सुनाने वाले। तो उसी तरह जो परीक्षित महाराज हैं उनको सुखदेव गोस्वामी अभी भागवतम सुनाएंगे। तो इस तरह से नटो नाट्य नाट्य धरो यथा, जैसे एक एक्टर है एक्टिंग करता है ना, तो इसी तरह परीक्षित महाराज सांप उठाया बाण से और गले में रख दिया। तो एक्चुअली ठीक है अपराध है, लेकिन इतना बड़ा भी अपराध नहीं था कि मृत्युदंड दे दिया जाए। लेकिन मृत्युदंड देने से क्या हुआ, उस श्राप क्या वरदान में चेंज हो गया। उन्होंने भागवतम सुना 7 दिन और वो भागवतम हम सबको उससे लाभ हो रहा है। तो इस तरह से
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो भगवान के परम शुद्ध भक्त होते हैं तो उनके जीवन में कुछ भी घटना होता है तो वो भगवान की इच्छा से होता है।
हाँ वो तो है, भगवान एक शुद्ध जो भक्त है उनके सुख में भी होंगे दुख में भी होंगे, वो सब भगवान का ही इंटरवेंशन है उसमें। तो अलग अलग भक्त क्या है, भगवान से अलग अलग तरह से आदान प्रदान करते हैं। भीम के अंदर भी बदले की भावना थी लेकिन द्वेष नहीं था। बदले की भावना क्यों थी, क्योंकि भक्त भक्त मतलब भाई तो है और पत्नी तो है लेकिन भगवान के भक्त है, इसकी वजह से उनको बदले की भावना थी कि कैसे उन्होंने जो भगवान के भक्त हैं उनका अपमान किया। इसीलिए वो इस तरह से दिखाते हैं कि वो दुशासन का जो सीना उसको फाड़ के उसका जो रक्त है वो पी जाऊंगा, है ना। और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा लिया था कि जब जो दुशासन के जो रक्त होगा उससे अपने जो केस है उसको धोएंगे, है ना। तो भगवान की शुद्ध भक्त है, लेकिन ऐसे व्रत क्यों ले रहे हैं? ऐसे व्रत क्योंकि भगवान के भगवान और भगवान के भक्तों का अपमान हो रहा है। और वही जो भीम है, भीम थे द्वापर में, वही भीम जब आते हैं कलयुग में मध्वाचार्य के रूप में, तो महाभारत के ऊपर लोगों को बहुत सारी भूल धारणा है कि ऐसा क्यों हुआ, वो जो अर्जुन है इनकी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया, तो ये सब क्या हो रहा है, कौन परम है। तो फिर मध्वाचार्य ने उस पर टीका लिखी जिसको बोलते हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय, जिसमें बताया गया है कैसे महाभारत को शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से देखना। तो जो भीम थे उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि कलयुग में लोग महाभारत को भी गलत समझेंगे, इसके लिए कलयुग में तरीका क्या है, मारना नहीं है, कलयुग में तरीका क्या है, प्रचार है ना, और पुस्तकें जो लोगों के भूल धारणा है वो पुस्तकें लिखना। तो भीम ने फिर इस तरह से किया। अलग अलग भक्तों का अलग अलग वो होता है। वो तो ऑथेंटिक है ना, मध्वाचार्य ने लिखा है और उससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी क्या चाहिए। नहीं, प्रभुपाद की पुस्तकें 3 बार पढ़, पूरी पुस्तक 3 बार पढ़ने के बाद पढ़ सकते हैं। महाराज बताते हैं कि उन्होंने 6 बार प्रभुपाद की सारी पुस्तकें पढ़ी थी, उसके बाद फिर दूसरी पुस्तक पढ़ी थी, 6 times। पढ़ सकते हैं, कभी विशेष कुछ ऐसे जरूरत पड़ जाए तब पढ़ सकते हैं। तो जो रामायण है और जो महाभारत है, जैसे रामायण में भी बहुत जगह आता है कि दशरथ महाराज स्वर्ग गए, स्वर्गवासी हो गए, तो स्वर्गवासी नहीं हुए, वो साकेत गए थे अयोध्या धाम। तो वो स्वर्ग को कैसे समझना है, तो वो सब मध्वाचार्य उसमें महाभारत तात्पर्य निर्णय में समझा रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम की जय।